श्रीलंका के छोटे से आइलैंड नेशन में चल रही थी शायद दुनिया की सबसे बड़ी सिविल वॉर। हर तरफ हो रहे थे बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग्स, मर्डर्स और बेहिसाब क्राइम्स। कोई भी सुरक्षित नहीं था। सिचुएशन पुलिस और आर्मी के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो चुकी थी। इस जंगल राज में एक ही उसूल था, किल और बी किल्ड। और इस वॉर में जाने अनजाने में उलझ गए थे इंडिया के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी खुद श्रीलंका की सरकार। हालत इतनी मुश्किल हो गई थी कि इंडियन अथॉरिटीज को उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। इस क्राइसिस में अचानक इंडिया को मिला एक अनकन्वेंशनल जवाब। चलिए जानते हैं एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसका जिक्र आज किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता।
मिस्ट्रीज, थियरीज एंड द अननोन। द इंडिया क्लासिफाइड पॉडकास्ट, अ रेड एफएम ओरिजिनल।
नमस्कार, मैं हूं पूरब और आप सुन रहे हैं इंडिया क्लासिफाइड, एक ऐसा शो जो डेडिकेटेड है इंडिया को। हम आप तक लाते हैं भारत के कुछ बेहद इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज और स्टोरीज। अगर ऐसे कोई टॉपिक हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो बताइए हमें इंस्टाग्राम पर, मैसेज कीजिए @redfmpodcast पर या फिर मेरे हैंडल @rjpurab पर। क्या आप जानते हैं कि सिविल वॉर किसे कहते हैं? यह जंग दरअसल किसी दूसरे देश के साथ नहीं बल्कि एक ही देश में रहने वाले दो ग्रुप्स के बीच में होती है, और यह कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पर चली जाती है कि इससे देश की इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स खतरे में आ जाते हैं। श्रीलंका में हो रही जंग भी कुछ ऐसी ही थी। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए पहले श्रीलंका की डेमोग्राफी को समझना होगा। यहां की दो मेन कम्युनिटीज हैं सिन्हेलीस और तमिल्स, जिसमें सिन्हेलीस लोगों की आबादी है 70%। तमिल्स में कुछ नेटिव्स हैं और कुछ वो लोग हैं जिनके पूर्वजों को ब्रिटिशर्स इंडिया से लेकर आए थे। इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स अपने टी और रबर प्लांटेशन में काम करवाने के लिए लोगों को इंडिया से श्रीलंका लाते थे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कई सिन्हेलीज लोगों ने कहा कि सारे तमिल्स को श्रीलंका से निकल जाना चाहिए। श्रीलंका सिन्हेलीज लोगों का प्रदेश है और इसके रिसोर्सेस पर तमिल्स का कोई हक नहीं। मैं आपको बता दूं कि उनके सपोर्ट में पॉलिटिशियंस भी आए, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 70% मेजॉरिटी वाली सिन्हेलीज कम्युनिटी को खुश रखना उनके लिए जरूरी था। और तो और, भारत सरकार ने भी श्रीलंकन गवर्नमेंट से कोऑपरेट किया और कई इंडियन तमिल्स को वापस इंडिया डिपोर्ट किया गया। लेकिन इंडिया जैसी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री के भी अपने लिमिटेशंस थे। सोचिए कि जिस घर में आपका परिवार बरसों से रह रहा हो, जहां आपका बचपन बीता हो, जिस जगह को आप अपना होम टाउन कहते हो, वहां से अगर कोई अचानक आपको चले जाने को कहे तो? ऐसी हजारों तमिल फैमिलीज थी जो कई जनरेशन से श्रीलंका में ही बसी थी। जाहिर है कि इन लोगों ने अपना घर छोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद कई सालों तक श्रीलंका में एंटी तमिल राइट्स हुए। जगह जगह पर सिन्हेलीज मॉब्स तमिल पर अटैक करने लगे। यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जॉब्स में तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। श्रीलंकन पुलिस भी तमिल्स पर अत्याचार करने लगी। ये सब देखकर बड़े हो रहे तमिल यूथ में गुस्सा बढ़ने लगा। श्रीलंका में अब तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स तैयार होने लगे। जंगलों में रिबेल्स ने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए। 12-13 साल के बच्चों के हाथों में AK-47 थमा दी गई। इन रेबेल ग्रुप्स में सबसे पावरफुल था LTTE, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। LTTE का एक ही मकसद था, श्रीलंका में एक अलग तमिल स्टेट की स्थापना, और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब तमिल भी पुलिस और सिनहलीज लोगों पर अटैक्स कर रहे थे। फिर 1983 की एक घटना से शुरू हुई नेशन वाइड सिविल वॉर। जुलाई 1983 में LTTE ने श्रीलंका आर्मी के कुछ सोल्जर्स की हत्या कर दी, जिसके रिटेलिएशन में एक हफ्ते तक श्रीलंका में भयानक एंटी तमिल राइट्स हुए। हिस्ट्री बुक्स इस इंसिडेंट को ब्लैक जुलाई कहती है। LTTE अब श्रीलंकन आर्मी और पुलिस फोर्स पर ज्यादा एक्सट्रीम, ज्यादा खूंखार अटैक्स करने लगा था। एक छोटे से गोरिल्ला फोर्स के रूप में शुरू हुआ LTTE धीरे धीरे एक शक्तिशाली मिलिट्री आउटफिट बन गया था, जिसके पास अपनी खुद की एयरफोर्स यूनिट, नेवल यूनिट, इंटेलिजेंस विंग और एक स्पेशलाइज्ड सुइसाइड अटैक यूनिट थी। बच्चों और औरतों से सुइसाइड अटैक्स करवाने वाला LTTE रिबेल ग्रुप से अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा इशू भारत से कैसे कनेक्टेड है। श्रीलंका में हजारों इंडियन तमिल्स थे, जिनकी एक्सटेंडेड फैमिली इंडियन स्टेट तमिलनाडु में रहती थी। श्रीलंका में बसे अपने रिलेटिव्स को तमिलनाडु के लोग सपोर्ट करने लगे थे। उन्होंने लोकल पॉलिटिशियन से भी मदद मांगी थी। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका में तमिल्स की लड़ाई को असिस्टेंस दिया। रॉ ने उन्हें वेपन्स, ट्रेनिंग और फंडिंग पहुंचाई। हालांकि LTTE के एक्सट्रीम एक्शन देखकर इंडिया ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। इस वॉयलेंस को खत्म करने के लिए इंडिया ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से हाथ मिलाया। 1987 में इंडियन मिलिट्री की एक यूनिट श्रीलंका भेजी गई। इस यूनिट का नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और इनका काम था तमिल मिलिटेंट्स को मार गिराना। मतलब इंडियन सोल्जर्स को अब उन लोगों से लड़ना था जो उनके साथ ही ट्रेन हुए थे। लेकिन ऐसा करने से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट होती गई। धीरे धीरे इंडिया के दोनों साइड्स पर एनिमीज बनते गए। एक साइड पर थे LTTE जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स और दूसरी साइड पर थे श्रीलंकन पॉलिटिशियंस, जिन्हें लगता था कि इंडिया ने ही LTTE को पावरफुल बनाया था। फिर 2005 में आए श्रीलंका के नए डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल गोटाबाया राजपक्षा। राजपक्षा एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे जो देश की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा थे। उनका मिशन क्लियर था, किसी भी तरह इस सिविल वॉर को खत्म करना। और हां, उनके ऑर्डर्स को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था। उनका टारगेट सिर्फ तमिल मिलिटेंट्स ही नहीं, बल्कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और हर वो इंसान था जो कभी भी श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया हो। माना जाता है कि राजपक्षा ने डेथ स्क्वाड्स बनाई थी, जिन्हें टॉर्चर, रेप, किडनैपिंग्स और ब्रूटल मर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए फ्री हैंड दिया गया था। कई वेटरन इंडियन ऑफिसर्स के मुताबिक राजपक्षा की टॉर्चर मेथड्स बेहद क्रूर होती थी। उनकी अपनी फैमिली उन्हें द टर्मिनेटर कहकर बुलाती थी। राजपक्षा श्रीलंका में रॉ के इन्फ्लुएंस और एक्सटेंडेड नेटवर्क के बारे में जानते थे, इसीलिए उनके हिटलिस्ट पर कई रॉ एजेंट्स थे जिन्हें राजपक्षा के इन्फॉर्मेंट्स देश भर में ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ LTTE के मिलिटेंट्स तो पहले से ही इन ऑफिसर्स के पीछे पड़े थे। रॉ एजेंट्स ट्रैप हो चुके थे और उन्हें राजपक्षा ट्रैक ना कर सके, इसीलिए इंडिया ने भी उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि इंडिया के रॉ हेडक्वार्टर्स में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर रॉ एजेंट्स को श्रीलंका से जिंदा कैसे निकाला जाए। एक दिन कुछ सीनियर ऑफिसर्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे थे। तब मीटिंग के दौरान रूम में एक औरत चाय की ट्रे लेकर आई। इस औरत का नाम था सुंदरी और इनकी उम्र थी तकरीबन 55 साल। जब ऑफिसर्स को पता चला कि सुंदरी एक तमिलियन है जो सिनहलीस भाषा भी जानती है, तब उन्होंने एक प्लान बनाया। सुंदरी की खासियत यह थी कि वो सिनहलीस और तमिल दोनों ग्रुप्स में घुल मिल सकती थी, इसीलिए उनको अंडरकवर भेजने का फैसला हुआ। उन्हें प्रॉब्लम समझाई गई और सुंदरी जाने के लिए राजी हो गई। इसके बाद बस एक हफ्ते में सुंदरी की एक फेक आइडेंटिटी तैयार की गई। ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए जिनकी मदद से वो वॉर जोन में एक नर्स बनकर घूम सकती थी। सुंदरी श्रीलंका के डेंजरस एरिया में घुसकर इंडियन एजेंट्स की इंफॉर्मेशन निकालने लगी। फिर एक तमिल बोट ओनर की मदद से उन्होंने एक एक करके लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। सुंदरी ने कई एजेंट्स को बचाकर इंडिया पहुंचाया। आज सुंदरी एक मिस्ट्री है। उनकी सेफ्टी के लिए रॉ उनकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेगा। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कैसी दिखती थी और मिशन के बाद कहां गई। आज कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपको इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। रॉ जैसी एजेंसीज ऐसी कई कॉवर्ट ऑपरेशंस रेगुलरली कंडक्ट करती है। सुंदरी जैसी एजेंट्स को हम सैल्यूट करते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। हम इन्हें मिल नहीं सकते, लेकिन इनकी बहादुरी और सैक्रिफाइस से सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसे और मिशंस के बारे में जानना है तो हमें DM कीजिए @RedFM Podcast पर या @RJPoorab पर मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।
यू आर लिसनिंग टू रेड पॉडकास्ट इंडिया क्लासिफाइड, written by Mihir Joshi, audio designed by Ayush Mehra, creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.